इप्सिता को अवंतिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभिमन्यु के साथ होने के कारण वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही थी, इसलिए उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। इप्सिता ने मन ही मन कहा, ये बार बार वही बातें दोहराकर अभिमन्यु को दुखी करने की कोशिश कर रही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अवंतिका को यकीन हो जाए कि हम दोनों सच में शादी करने वाले हैं। लेकिन हम क्या करें? इप्सिता ने अवंतिका को घूरते हुए कहा, ओ हेलो, हम दोनों तुम्हारे साथ बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते और ना ही तुम्हें कुछ साबित करना चाहते हैं, क्योंकि तुम इसके लायक भी नहीं हो। चलिए अभिमन्यु। इतना कहकर इप्सिता अभिमन्यु को लेकर पार्टी हॉल की ओर जाने लगी। तभी अवंतिका पीछे से तेज आवाज में हंसते हुए बोली, मैं जानती हूँ अभिमन्यु, तुम इससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे दिल में आज भी सिर्फ एक ही नाम बसता है और वो है अवंतिका। अभिमन्यु चुपचाप चलता जा रहा था। इप्सिता ने ये बात सुनकर रुक गई और आत्मविश्वास से कहा, बस बहुत हो गया, इसे यकीन दिलाने के लिए हमें ये करना ही होगा। अभिमन्यु रुकना नहीं चाहता था, इसलिए इप्सिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। इप्सिता के ऐसा करने पर अभिमन्यु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इप्सिता अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अभिमन्यु को उसकी आंखों में कुछ अलग सा दिख रहा था। इप्सिता की बातें सुनकर और उसे इस तरह घूरते देखकर अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, कहीं इप्सिता को हम पर शक तो नहीं हो रहा है? वो इस तरह चलते चलते क्यों रुक गई और क्या करने वाली है वो? अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखते हुए थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या बात है इप्सिता, आप रुक क्यों गई, वो भी इस लड़की की बातों में आकर? चलिए, हम बाहर चल रहे थे ना? इप्सिता ने जवाब दिया, हम बाहर चलेंगे, लेकिन एक मिनट रुककर, किसी की गलतफहमी दूर करनी है। इतना बोलकर इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसके करीब आने लगी। इप्सिता को इस तरह अपने करीब आते देखकर अभिमन्यु एक कदम पीछे हटा और दीवार से लगकर खड़ा हो गया। इप्सिता ने अभिमन्यु के कॉलर को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसके होठों के करीब आने लगी। इप्सिता को इतने करीब आते देखकर अभिमन्यु शॉक्ड होते हुए बोला, इप्सिता ये आप क्या कर? इतना ही बोला था कि इप्सिता ने अपने मुलायम होठ अभिमन्यु के होठों पर रख दिए। सिर्फ अवंतिका को दिखाने के लिए वो जानबूझकर बहुत ही धीरे धीरे अभिमन्यु को किस करने लगी। अवंतिका ने इप्सिता को किस करते देखा तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि जो हो रहा है वो सच है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुट्ठी बंद करते हुए कहा, ये दोनों इस तरह किस कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोग सच में सगाई कर चुके हैं, क्योंकि जहां तक मैं अभिमन्यु को जानती हूँ, वो किसी भी लड़की को दिखावे के लिए इस तरह किस नहीं कर सकता, लेकिन ये कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों सच बोल रहे थे, ये नहीं हो सकता। अवंतिका अभिमन्यु और इप्सिता को इस तरह किस करते हुए ज्यादा देर नहीं देख पाई। वो दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्हें इतने करीब देखकर वो गुस्से से पैर पटकते हुए वॉशरूम कॉरिडोर से बाहर निकल गई। दूसरी ओर अभिमन्यु इप्सिता के किस करने पर बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसके दिमाग से अवंतिका के वहां होने की बात निकल गई थी। इप्सिता जिस तरह से धीरे धीरे उसे किस कर रही थी, अभिमन्यु भी उसकी किस में खो गया था। उसकी आंखें बंद थी और वो पूरी तरह से उसे महसूस करने लगा था। उसके हाथ इप्सिता की कमर पर आ गए थे, लेकिन इप्सिता ने तो सिर्फ अवंतिका को दिखाने के लिए ही अभिमन्यु को किस किया था। उसकी नजरें अवंतिका पर ही टिकी हुई थी। वो अभिमन्यु को किस कर रही थी, लेकिन साथ ही अवंतिका के रिएक्शन पर भी ध्यान दे रही थी। जैसे ही अवंतिका चली गई, इप्सिता भी अभिमन्यु से दूर हो गई। उसने अवंतिका को जाते हुए देखकर कहा, अब तो उसे यकीन हो जाएगा कि हम दोनों मंगेतर हैं। अभिमन्यु, मुझे माफ करना, हमने आपसे बिना पूछे आपको किस? अवंतिका के जाने के बाद राहत की सांस लेते हुए इप्सिता अपनी सफाई दे रही थी, लेकिन अभिमन्यु उसके होठों को ही देख रहा था। जैसे ही इप्सिता ने माफी मांगी, अभिमन्यु ने इप्सिता की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके होठों को जोरदार किस करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु जितना जोश से इप्सिता को किस कर रहा था, इप्सिता बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बिना पलक झपकाए वो अभिमन्यु को देखे जा रही थी। अभिमन्यु आंखें बंद करके पूरी तरह से इप्सिता को किस करता जा रहा था। किस बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। इप्सिता का मन हुआ कि वो अभिमन्यु को रोके, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। उसने अभिमन्यु के सिर के पीछे हाथ रखा और उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए उसी जोश के साथ उसे किस करने लगी। इप्सिता की उंगलियां अभिमन्यु के बालों में थी और अभिमन्यु का हाथ इप्सिता की कमर पर था। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच हवा निकलने की भी जगह नहीं बची थी। वे दोनों एक दूसरे को किस करते हुए इतने खो गए कि उनकी किस और भी गहरी होती चली गई। इप्सिता को समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु को कैसे रोके। वो भी अभिमन्यु के साथ किस करने में इतनी ज्यादा जोशीली हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे की सांस महसूस कर पा रहे थे। दोनों किस में खो गए थे। इप्सिता भी अभिमन्यु को अपने और करीब आने से नहीं रोक रही थी। उसे अभिमन्यु का इतना नजदीक आना और उसका जोश उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा इप्सिता ने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसे अपने पेट में तितलियां उड़ती सी महसूस होने लगी थी। उन दोनों के किस करते हुए 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे। इप्सिता और अभिमन्यु दोनों की आंखें बंद थी। वे दोनों पूरी तरह से अपने काबू से बाहर हो चुके थे। तभी थोड़ी दूर पर बने वॉशरूम का दरवाजा किसी ने अंदर से खोला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर इप्सिता जैसे होश में आई और उसने किस करना बंद कर दिया। उसने अपना सिर थोड़ा पीछे किया और अभिमन्यु को भी हल्का सा पीछे धकेला। इप्सिता के ऐसा करते ही अभिमन्यु ने भी अपना हाथ इप्सिता की कमर से हटा लिया और उससे थोड़ा दूर हो गया। इतनी देर तक इतने जोश से किस करने के बाद अब वे दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। दोनों काफी असहज महसूस कर रहे थे। इप्सिता ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और अपने होठों को पोंछने लगी। अभिमन्यु ने अपने बालों में हाथ फेरा और अपने बालों को ठीक करते हुए धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है हमें बाहर चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इप्सिता ने धीरे से हां में सिर हिलाया। अभिमन्यु आगे आगे चल रहा था। इप्सिता एक मिनट वहीं रुकी और फिर अभिमन्यु के पीछे आने लगी। वो पार्टी हॉल की तरफ ही जा रही थी। अभी दो मिनट पहले जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए इप्सिता ने मन ही मन कहा, ये क्या हो गया था हमें, हमने अभिमन्यु को रोका क्यों नहीं और अभिमन्यु भी मुझे इतने जोश से क्यों किस कर रहा था, क्या अभिमन्यु? इतना सोचते हुए इप्सिता एक पल के लिए रुकी और उसने धीरे से अपने होठों को छुआ और मन ही मन कहा, मैं भी तो अभिमन्यु के साथ किस करने में उसका पूरा साथ दे रही थी, मैं सिर्फ अभिमन्यु को दोष नहीं दे सकती और वैसे भी शुरुआत तो मैंने ही की थी। इप्सिता ये सोचते हुए आगे बढ़ी। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर देखा। इप्सिता खोई हुई सी लग रही थी। वो रास्ते में आई दो तीन सीढ़ियों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा पैर रख दिया। इप्सिता का पैर लड़खड़ाया और वो गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। उसने इप्सिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ में महसूस किया तो नजर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। जैसे ही उनकी सांसें मिली, इप्सिता को ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें रुक सी गई हैं। अभिमन्यु भी अपनी जगह पर जम गया। कुछ देर तक वे दोनों इसी अवस्था में रहे। फिर इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए अभिमन्यु ने उसे सीधा खड़ा किया और इधर उधर देखने लगा। उसे ऐसा करते देख इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु क्या हम घर वापस चल सकते हैं?
अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा, वो काफी शर्मा रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता से और कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ पूछा तो वो शायद अभी जवाब नहीं दे पाएगी। अभिमन्यु इप्सिता को और असहज नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना कोई सवाल किए उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं घर वापस, वैसे भी बहुत कुछ हो गया और काफी देर भी हो रही है। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के साथ वहां से निकल ही रहा था कि उसका मैनेजर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ सर, आप जा रहे हैं क्या? अभिमन्यु ने कहा, हाँ हम निकल रहे हैं, बाकी का काम कल ऑफिस में करेंगे, किसी से मिलना रह गया हो तो तुम हमारी पर्सनल मीटिंग अरेंज करवा देना। मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाया। मैनेजर से बात करके अभिमन्यु इप्सिता को लेकर वहां से बाहर निकलने ही वाला था कि उसके सामने एक लड़का आ गया। उस लड़के ने काले रंग का कोट, पैंट और बोटाई पहन रखी थी। उसके बाल अच्छे से सेट थे। वो दिखने में अभिमन्यु की ही ऊंचाई का लग रहा था, लेकिन वो अभिमन्यु जितना हैंडसम नहीं था। उसके चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान थी। वो लड़का अभिमन्यु और इप्सिता के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कुंवर साहब, आप अपनी ही पार्टी से इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? अभी तो हमारी आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर तो रुकिए, आपके साथ तो पहली बार हम इतनी खूबसूरत महिला को देख रहे हैं, हमसे मिलवाएंगे नहीं इन्हें? अभिमन्यु ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, ओ पृथ्वी, ये मेरी मंगेतर इप्सिता सूर्यवंशी है और इप्सिता ये पृथ्वी है। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि उसकी बात पूरी नहीं हो पाई और पीछे से किसी की आवाज आई और तीनों मुड़कर उस तरफ देखने लगे। क्रमशः